ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मणिपुर के इम्फाल और राजस्थान के जयपुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। श्री सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। भाजपा आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र में थैना ओजम बसंत कुमार को और बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र में नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। कांग्रेस और उसके समर्थक दल भी आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से अंगोमचा बीमोल अकोईजाम के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल राज्य में 4 रैलियां की। जयपुर में श्री शाह के अलावा भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस नेताओं का आज प्रचार का कार्यक्रम है। श्री शाह इस समय त्रिपुरा में अगरतला के कुमारघाट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आलत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो आटिंगल के लिए रवाना होंगे, जहां वो कट्टाकडा में एक सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वो आज और कल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जहां वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी इस सप्ताह प्रचार अभियान में उतरने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कुछ गुटों द्वारा सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संकुचित राजनीतिक हितों और निजी फायदे से प्रेरित होकर ऐसे तत्व न्यायिक प्रणाली के बारे में लोगों के विश्वास में कमी लाने के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों ने इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई से न केवल न्यायपालिका की शुचिता का अनादर होता है, बल्कि न्यायालयों के न्यायाधीशों की पारदर्शिता के सिद्धांतों को सीधे चुनौती दी जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता को आज आबकारी नीति मामले में इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। के कविता की पुलिस हिरासत की 3 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत इसराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है। भारत ने ईरान और इसराइल से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर समझ और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।